हमने अभी तक सुना नचिकेता मृत्यु के पास पहुंचकर 3 रात उपवास रहने के कारण आचार्य मृत्यु यमराज उसे 3 वर देने के लिए कहते हैं और नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में मांगा कि मेरे पिताजी बड़े अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको जरा शांत कर लीजिए, वो मेरे ऊपर ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके गुस्सा को थोड़ा शांत कर लीजिए। दूसरे वर के रूप में मांगा, यमराज ने प्रथम वर उनका पूरा किया। दूसरे वर के रूप में मांगा कि हमने सुना है कि स्वर्ग पाने का जो उपाय है जिसे हम यज्ञ कहते हैं, वो यज्ञ कैसा है, क्या है, उसका क्या महत्व है, कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, वो सब कुछ आप बताइए। हम उस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। यज्ञ स्वर्ग देता है, सुख देता है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है सामूहिक कार्य। जब मैं खुद के लिए जीता हूं तो मैं अंदर से कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे पड़ोसी में अगर मातम मन रहा हो तो मैं दिवाली मना करके खुश नहीं हो सकता। मेरी दिवाली में तभी खुशी होगी जब मेरे परिवार में सब सुखी हो, मेरे बंधु रिश्तेदारों में सब सुखी हो, मेरे पड़ोसियों में कोई समस्या ना हो, मेरे देश में कोई समस्या ना हो। अगर आपके शहर में बाढ़ आया हो और कोई मुसीबत है, आपके रिश्तेदारों में किसी की कोई समस्या है, तो आप कैसे त्योहारों की खुशी मना सकते हैं? तो मेरी खुशी मेरे में छुपी हुई नहीं होती है, मेरा सुख मेरे में नहीं होता, वो मेरे समग्र आसपास के वातावरण में होता है। और जब सब कुछ ठीक होता है तो स्वाभाविक रूप से मैं सुख पाता हूं। और यज्ञ का यही अर्थ होता है, जो कुछ आप सबको साथ लेकर भोगते हो वही यज्ञ है। इसीलिए जब हम यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, हर मंत्र के आखिर में आप जो स्वाहा बोलने के बाद बोलते हैं, इदन्न मम इदम अमुक देवाय, ये मेरा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हर मंत्र के बाद में ये बोलो कि ये मेरा नहीं है, जबकि ये तो मेरा है। ये जो घर वो मेरा है, जो घी में डाल रहा हूं वो मेरे पैसे की होगा, ये सामग्री मेरी होगी, ये संविधाएं मेरी होंगी, सब कुछ तो मेरी है। फिर क्यों बोलते हैं हम झूठ कि मेरा नहीं है? यकीनन मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब इसीलिए मेरे पास नहीं है कि मैंने कमाया, इसीलिए है कि ईश्वर ने मुझे वो बुद्धि दी, वो शरीर दिया, वो इंद्रियां दी, वो ताकत दी, जिसके कारण मैं कमाने लायक बना। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग धनी बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते। करोड़ों लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते। वो भी चाहते हैं, वो भी परिश्रम करते हैं, वो मजदूर भी मेहनत करता है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेहनत करता है, उसके पास भी उतना नहीं है जितना 3 घंटे मेहनत करने के पास है। क्योंकि आपकी बुद्धि तीव्र है, वो बुद्धि हमने कल्टीवेट नहीं किया है, वो बुद्धि हमें किसी ने दी है, ये हाथ पैर हमें किसी ने दी है, ये दिमाग हमें किसी ने दी है। उस दिमाग को हम सही उपयोग करते हैं तो सही फायदा मिलता है। अगर वो कल छीन ले तो हमारे पास जो कुछ है वो 2 दिन में गायब हो सकता है। इसीलिए उस ईश्वर के पास ये सोचना, ये भावना पैदा करना कि ये मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे दिए हुए को मैं तुम्हें देता हूं, तो फिर जीवन आसान होता है। ये धरती जिस पर हम भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, जिस पर हम चारों तरफ से दीवार बनाते हैं, और जिस जमीन के लिए भाई भाइयों में लड़ाइयां होती है, देश देश में लड़ाइयां होती है, दोस्तों में समस्याएं होती हैं, वो जमीन हमारे पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी मिलेगी। जमीन में जान होती तो जरूर हंसती, मजाक उड़ाती कि कितने आए, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, सब कब्जा कर गए, अरब मनमोहन सिंह कब्जा कर बैठे, उसके बाद और कोई करेगा, कोई भी एबीसीडी। इस अमेरिका में भी करोड़ों राजा बने, आए, गए, जमीन वहीं पर है। जमीन में कितने लोग, जिस जमीन पर मैंने घर बना रखा है, जिसको कब्जा करने के लिए हो सकता है मैं किसी से लड़ा हूं, किसी से नाराज हुआ हूं, या कोई दूसरा मेरे से परेशान हुआ हो, जिस जमीन को पाने के लिए मैंने कितने पसीने बहाए हैं, उस जमीन में रहते रहते मैं मर जाता हूं, उस जमीन वहीं के वहीं रहती है। फिर नया मालिक आता है, नया नाम प्लेट लगता है, हर 50 साल में 100 साल में यहां तो थोड़ी जल्दी नेम प्लेट बदल जाते हैं, क्योंकि लोग जल्दी घर बदल देते हैं, हर 10-20-50 साल में नेम प्लेट बदल जाता है, पर जमीन वहीं पड़ी रहती है। जमीन ना मेरी है ना आपकी है, वो ईश्वर की जमीन है, वो हमें रहने लायक बनाया है। भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, सब बर्बाद होंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ईश्वर की कृपा है, इसीलिए हम हैं। तो जमीन मेरी हो ही नहीं सकती, अगर होती तो मेरे मरने के साथ मेरे साथ भी जाती। धन दौलत जो मैंने कमाया वो मेरा बोलता जरूर हूं, पर जब मैं मरता हूं तो साथ में कुछ नहीं जाता। मिस्र में पिरामिड बनाते हैं तो राजा मरने के बाद, मरने से पहले ही निश्चित किया जाता है क्या क्या सामान राजा के साथ जाएगा। तो यहां तक कि राजा मरने के बाद राजा के जो रानियां हैं, जिंदा जवान रानियां, उनको भी दफना दी जाती है, तो पिरामिड में दफना दी जाती थी। पर सचमुच क्या राजा उन रानियों को भोग पाया, ना वो जो जमीन, सोने के सामान, जो भी खाना पीना रखे भोग पाए। 1000-5000 साल बाद जो खोदा गया वो सोने वहीं के वहीं मिले, कहां जाएंगे? अगर वो राजा का होता तो जरूर राजा के साथ जाते। ये भावना पैदा करना कि जो कुछ मेरा है वो सचमुच मेरा नहीं, मैं सिर्फ उसका भोग कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं। जैसे ट्रस्ट बनाते हैं ना, ट्रस्टी और मालिक में क्या अंतर होता है? ट्रस्टी भी उसको यूज करता है, जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, जो बैंक बैलेंस है, वो यूज करता है, पर उसके दिमाग में हमेशा रहता है ये मेरा नहीं है, मैं उसको खर्च कर सकता हूं। जो आप समाज के मैनेजिंग कमिटी के मेंबर हो, तो आपको हमेशा यह ध्यान रहता है कि यह मेरा नहीं है, खर्च तो आप ही करते हैं, पर इस भावना के साथ कि यह मेरा नहीं है, वो और किसी का है। जब हमारे अपने जिंदगी के साथ जुड़े हुए चीजों में भी यही फीलिंग आ जाए कि यह मेरा नहीं है पर मैं इनका उपयोग कर सकता हूं जब तक चाहूं, लीगली कर सकता हूं, तो फिर जीवन आसान होता है, फिर झगड़ा कहीं बसता नहीं है। यज्ञ इसी का नाम है कि दुनिया को जरूर भोगो पर अकेला नहीं, सबका समझ करके। तुम्हारा जितना हिस्सा है, तुम जितना सामर्थ्य तुम्हारे पास है, जितना ले सकते हो जरूर लो, पर दूसरों का भी है उसमें, क्योंकि ना ये धन संपत्ति जमीन जायदाद ये तुम्हारा है, ना तुम्हारे पड़ोसी का है, ना ये तुम्हारा है, ना तुम्हारे दुश्मन का है, ये सब ईश्वर का है। उससे होता क्या है, इसीलिए यज्ञ पहली सीढ़ी है, प्राइमरी क्लास है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। जब यज्ञ दिल से किया जाए तो हमारी योग्यता बनती है, हमारा मन शुद्ध होता है, मन की गंदगियां साफ होता है, हम निर्मल होते हैं, तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमारी योग्यता बनती रहती है। यमराज ने नचिकेता को यज्ञ की वो सारी विधियां समझा दी, कितनी लकड़ियां चाहिए, हवन कुंड कैसे बनना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कौन से मंत्र होना चाहिए, सब समझाया। समझाने के बाद उसको लगा कि ये छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का, पता नहीं ये वर के रूप में मांगा, इसको कुछ समझ में आया नहीं आया, क्योंकि थोड़ा गहन विषय है, पूछ के देखता हूं। पूछा, बताओ जो जो मैंने बताया तुम्हें कुछ समझ में आया? नचिकेता ने वैसे के वैसे सब कुछ सुना दिया जो यमराज ने जैसा कहा था। यम को बड़ी खुशी हुई, उसको लगा कि ये बड़ा पात्र है, योग्य है। उसको बोला, ठीक है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुना और ग्रहण किया, इसीलिए मैं तुम्हें और एक तीन वर के अलावा आज तुम्हें एक बोनस वर देता हूं। तीन वर तो तुम्हें मांगना है तुम्हारे तीन रात के भूखा उपवास रहने के कारण। एक मैं बोनस में तुम्हें कुछ देता हूं, वो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, वो मेरे अपने तरफ से, वो कंपनी के फायदा हुआ इसके लिए शेयर कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। वो क्या है कि आज से ये यज्ञ, इस यज्ञ का जो अग्नि है तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसीलिए यज्ञ के अग्नि को नाचिकेता अग्नि कहते हैं। ध्यान रखिए, आज से जहां जहां दुनिया में यज्ञ होगा उस यज्ञ का जो अग्नि है उस अग्नि का नाम होगा नाचिकेता अग्नि, वो तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। ये बोनस है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मैं खुश होकर ये तुम्हें अलग से देता हूं। उसके बाद यमराज और कुछ उपदेश करते हैं। आज का विषय, त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा नीचाये मां शांतिमत्यंतमेति। जो व्यक्ति, जो यमराज ने नचिकेता को यज्ञ का उपदेश दिया, उसके कंक्लूजन में उपसंहार के रूप में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में इस नचिकेता अग्नि का तीन रूपों को जानता हो, तीन संधियां करता हो, संधि का मतलब जोड़, तीन तरह के कर्मों को करता हो, वो जन्म और मृत्यु से पार चला जाता है, वो ईश्वर की उपासना करते हुए उस परम शांति को प्राप्त करता है। तीन चीजें आपको इसमें समझना है, यज्ञ की तीन अलग स्थितियां क्या क्या है, तीन संधियां क्या है और तीन कर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये तीनों को करता है वो अपने जीवन में हर जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। यज्ञ की तीन चीजें होती है, तीन चीजों के होने से यज्ञ होता है। द्रव्य देवता संयोग यज्ञ, मीमांसा दर्शन में कहा कि जो आप हवन करते हो ना उसमें तीन चीजें होती है, एक तो देवता होती है जिस देवता के लिए आप आहुतियां देते हैं, और द्रव्य होता है जो घी सामग्री, अलग अलग यज्ञों में अलग अलग तरह के आहुतियों का विधान होता है, वो द्रव्य है, द्रव्य मतलब वस्तु। और संयोग, जब ये देवता और द्रव्य को जोड़ने के लिए जो आप मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र, ये तीन चीजों के मिलने से यज्ञ होता है। यज्ञ की इन तीन तीन चीजों को जो मिला करके चलता है, जो तीनों को समझता है, वो अपने जीवन में मृत्यु से पार पा सकता है। जरूरी नहीं जो अग्निहोत्र करते हैं यही यज्ञ है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, दुनिया के हर वो कर्म जिस कर्म में स्वार्थ नहीं, परार्थ के साथ स्वार्थ जुड़ा हो, समूह के साथ व्यक्तिगत उन्नति जुड़ा हो, वो सब यज्ञ होता है। उस यज्ञ में आप तीन चीज करते हैं। देवता का अर्थ होता है, ये बड़े मजेदार चीज है, देव में देवता के, वेद में देवता का मतलब होता है मंत्र का विषय। मंत्र में जो विषय होता है ना, जिसके बारे में मंत्र में चर्चा हुई, मान लीजिए किसी मंत्र में किसी एक डंडे के बारे में चर्चा हुई तो उस मंत्र की देवता डंडा है, वहां देवता टर्मिनोलॉजी है जिसका अर्थ होता है सब्जेक्ट मैटर। देवता का दूसरा, इसलिए वेदों में जहां जहां देवता शब्द मिले उसका अर्थ होता है उस मंत्र का विषय क्या है। कहीं गुस्से के बारे में वर्णन है तो गुस्सा देवता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा कोई ऐसी देवता, ये बाद में पुराणों में जैसे मृत्यु देवता, अब मृत्यु क्या है, यज्ञ वेदों में जिन मंत्रों में मृत्यु के बारे में चर्चा है उस मंत्रों की देवता मृत्यु, बाद में मृत्यु देवता के रूप में एक मूर्तिमान बन गया, जिसकी भैंस वाहन बन गया, जो गदा लेकर के घूमने लगा, वैसे इसी तरह जैसे विद्या किसी मंत्र का विषय है, विद्या विद्या को सरस्वती कहते हैं क्योंकि सरस्वती का सरस्वती नदी को भी कहते हैं सरस्वती क्यों, सरा का मतलब होता है हिंदी में भी सरकना होता है गति करना, संसार में भी सर है क्योंकि यह गति करता है सरति इति संसार। नदी को सरस्वती कहते हैं, सरह मतलब पानी होता है, सरह मतलब विद्या होती है क्योंकि जो कोई चीज गति करे स्वाभाविक गति करे वो सब सरह है। पानी एक जगह रुकता नहीं है इसीलिए पानी जिसके द्वारा बह जाए वो भी सरस्वती है और पानी भी सरह है। विद्या को सरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जानता है तो फिर 50-100 लोगों तक वो बात पहुंचता है, विद्या बढ़ती है इसीलिए विद्या भी सरस्वती हुई। किसी मंत्र की देवता विद्या है सरस्वती है तो फिर सरस्वती विद्या की देवी बन गई, बाद में उसकी एक मूर्ति बना दी, हंसवाहन बना दिया। तो ये धीरे धीरे धर्म की अपनी एक यात्रा होती है, जर्नी ऑफ रिलीजियन, उसमें बहुत कुछ चीजें जुड़ जाता है हट जाता है। तो इस तरह के हमारा धर्म जो रिलीजियन है हमारे सामने आया। दूसरी देवता अर्थ होता है, देवता का अर्थ वो जिसने हमें कुछ दिया है, दानात्वा। देवता का अर्थ द्योतनात् जो चमकता है रोशनी करता है, दीपना जो दूसरों को प्रकाशित करता है, द्युस्थानो भवति इति वा जो आकाश में चमकती हुई ताराएं हैं, ये सब देवता हैं। तीन चीजें समझनी जरूरी है, चार चीजें। एक तो जो कुछ भी देता है वह देवता है, जो हमें प्रकाशित करता है वह देवता है, जो खुद प्रकाशित होता है वह देवता है। हमें किसने दिया, दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है कि आपको नहीं दिया? वो जो आपके घर के बाहर जो मिट्टी में जो कीड़ा है उसके कारण भी आपका जीवन है क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जंगल के जो पशु पक्षी हैं उनका भी आपके जीवन में कुछ हिस्सेदारी है आपके इस सुखद जीवन के लिए। ये पेड़ पौधे पानी हवा आकाश धरती, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन खतरे में। फिर इंसान पर आइए, आपके मां आपके बाप आपके गुरुजन आपके बगल का ग्रोसरी का दुकान, आप कहेंगे उसके मेरे जीवन में क्या है? अगर ग्रोसरी का दुकान ना हो तो आप सेब खरीदने कैलिफोर्निया जाएंगे, गेहूं खरीदने और किसी मिसिसिपी जाएंगे। आपके पास पैसा होगा पर गेहूं खरीदने के लिए हवाई जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा, वो ग्रोसरी वाला है इसलिए आपकी जिंदगी आसान है। वो ड्राइवर जो ट्रक जो सामान ढोता है जो आपके घर में काम करता है वो सब आपके लिए देते हैं तभी हम जिंदा हैं। अगर सिर्फ मेरे पास ज्ञान या धन है मैं जिंदा नहीं रह सकता। आप कितने बड़े धनी बने, नोट खा नहीं सकते हैं, डॉलर नहीं खा सकते, डॉलर में रह नहीं सकते। मकान चाहिए रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, वो सब दूसरे पैदा करते हैं दूसरे बनाते हैं। उनमें से कोई भी नहीं होता तो हम नहीं होते, तो इसका अर्थ ही वो सब देवता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव वगैरह वगैरह। आचार्य भी देवता अतिथि भी देवता सब देवता, पेड़ भी देवता। हिंदुस्तान का अनपढ़ गंवार आदमी भी जानता है ये पेड़ भी देवता सांप भी देवता, उसको ये नहीं पता देवता का अर्थ क्या है। पर हिंदुस्तानी कंसेप्ट में हिंदुस्तानी मन में यह है कि हर चीज में देवता है। ये पश्चिमी लोगों को समझ में नहीं आता है इसीलिए कहते हैं ये पोंगापंती है, देखो जिसको मर्जी पूज डालते हैं। हमारा तो वन गॉड वन मैसेंजर, बस ये देखो कौवा को दूध पिला देते हैं, उधर कुत्ते को पूज कर देते हैं, गाय को पूज लेते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जिसका भी मेरे जिंदगी में कुछ एहसान है वो मेरे लिए देवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। मैंने शुरू में भी एक बार बताया था, हमारी गड़बड़ी सिर्फ एक जगह है, हम ठीक देवता पहचानते हैं। और दुनिया में सिर्फ हम ही एक संस्कृति है जो जानता है देवता क्या है, पर सिर्फ एक ही गड़बड़ी जो हम बहुत बड़ी गड़बड़ी करते हैं, हम उस देवता को पूजा करने के तरीके में गड़बड़ी करते हैं। पानी की पूजा करने चले और आरती उतारने लगे, जय गंगा माते, और बेचारा आरती पा पा करके गंगा ही गंदी हो गई, इतनी गंदी है वो पीने लायक नहीं रही। गाय की आरती उतारते उतारते गाय बुढ़ी होने से पहले ही बेच दिया, उसी को बेचा जिसके खिलाफ आंदोलन करते, गो हत्या बंद करो। गायों को बेचता कौन है? ये गाय को पूजने वाले बेचते हैं। जैसे ही गाय बुढ़ी हो जाए आप उन्हीं को बेचते हैं, उसी कसाई को जिस कसाई के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं झंडा फहरा करके, गो हत्या बंद करो। मैंने एक बार पूछा ये गो हत्या आंदोलन करने वाले, गो हत्या विरोधी आंदोलन वालों से, कभी बकरी हत्या मुर्गी हत्या आंदोलन क्यों नहीं करते हो? इनमें जान नहीं होता है क्या? क्योंकि हम खाते हैं इसीलिए हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम खाते हो इसीलिए हम आंदोलन करते हैं। हमारी पूजा की तरीका में गलती है। मां बाप मर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उनके श्राद्ध करते हैं, जीते जी मां बाप को आदर नहीं देते हैं। तो यज्ञ का जो देवता है, देवता का अर्थ है वो कोई भी चीज, जड़ हो चेतन हो, इंसान हो प्राणी हो पशु हो पक्षी हो, जिसका मेरे जीवन में कुछ एहसान है, जिसके कारण मेरा ये अस्तित्व है, मैं जैसा भी हूं जिसके कारण हूं, वो मेरे लिए देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यज्ञ उस देवता की पूजा का नाम होता है। जिस भी विधि से हम पूजा करें उस विधि का नाम यज्ञ है। और उसके लिए जो द्रव्य हम त्याग करते हैं वो यज्ञ है। यज्ञ के इन विधियों को जो समझता है, और दूसरा है तीन लोगों से संधि करना, संधि का मतलब जोड़ना, जीवन में यज्ञ के अलावा उन्नति के लिए और चीजें होती हैं, हम कुछ लोगों से जीवन भर में जुड़े रहें, वो कौन है? माता पिता और आचार्य। अपनी मां अपने पिता और अपने आचार्य अपने गुरु शिक्षक जिन्होंने आपको ज्ञान दिया पढ़ाया सिखाया आपको, आपकी जंगलीपन को हटाया। मान लीजिए हमारे स्कूल कॉलेज नहीं होते, हमारे टीचर्स नहीं होते, तो हमारे में और वो जंगली चिंपांजी में कितना अंतर होता है? अगर हम तथाकथित सभ्य हैं इसीलिए कि हमें किसी ने सिखाया, इसीलिए गुरुओं का महत्व भारत में है। मां बाप के साथ साथ जोड़ा जाता है हमेशा गुरु को, नहीं तो हम जंगली जानवर से फिर किसी भी हद से बड़ा नहीं हो पाते अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता। इन तीन लोगों से जीवन भर जुड़े रहना, जितना मां से पिता से और गुरुओं से जुड़े रहेंगे उतना हम ऋणों से अलग अलग कर्जों से मुक्त होते जाएंगे। और तीसरा चीज है त्रिकर्म कृत, जो तीन तरह के कर्मों को करता है। हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो तीन तरह के काम होते हैं। एक तो होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ होता है ऐसा काम जो हमें रोज करना होता है, और दूसरा मतलब है ऐसा काम जिसको करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिसको करने से कोई लाभ नहीं है पर जिसको ना करने से हानि होती है। जैसे आप रोज नहाते हैं, नहाने से क्या लाभ है? काला गोरा गोरा काला कुछ नहीं होने वाला, जैसा है वैसे ही रहेंगे। पर अगर नहीं नहाएंगे तो बदबू आने लगेगा, शरीर में घाव होने लगेंगे, बीमारियां होने लगेंगे, इसलिए नहाना जरूरी है। नहाना नित्य कर्म है। बाथरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या फायदा? लाभ कुछ नहीं है। पर नहीं खाने से हम जी नहीं सकते इसीलिए खाते हैं। जिन कर्मों को करने से लाभ नहीं है कुछ पर ना करने से नुकसान है उसको हम नित्य कर्म कहते हैं। हर आदमी करता है। इसी तरह यज्ञों में भी जब प्राचीन काल में यज्ञ व्यवस्था थी तो यज्ञों में भी तीन तरह के कर्म थे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। दूसरे हमारे जीवन में जो दूसरे तरह के कर्म होता है उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी निमित्त से, किसी ऑकेजन से हम कोई काम करते हैं, उसको करने से कोई, ना करने से कोई हानि नहीं है, करने से कोई लाभ नहीं है, पर वो किसी ऑकेजन है उसमें हम करते हैं। जैसे आप कभी घूमने चले जाते हैं किसी खास ऑकेजन पर, आप जो त्योहार मनाते हैं, आप जन्मदिन मनाते हैं, वो ना मनाने से कोई नुकसान नहीं, मनाने से कोई लाभ नहीं है, पर एक खास ऑकेजन को आप सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। तो जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने से कोई लाभ नहीं, ना करने से कोई हानि नहीं, पर किसी कारण से आपको करना पड़ता है। तीसरा कर्म होता है काम्य कर्म, मतलब डिजायर डूअर, कोई काम जिसको आप इसीलिए करते हैं कि उससे कुछ पाना चाहते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि हम वैसे तो 90% इसीलिए पढ़ते हैं, 90 नहीं कहेंगे, 99% इसीलिए पढ़ते हैं कि उसमें कमाना है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा कमाएंगे। भारत में वो आज भी है बहुत सारे जगह, छोटे शहरों में बड़े शहरों में भी लड़कियों को इसीलिए थोड़ी बहुत पढ़ाया जाता है कि अच्छा लड़का मिल जाए शादी के, पढ़ी लिखी लड़की हो जाए थोड़ी, मतलब कोई कामना जरूर है। हम काम करते हैं उसके बदले हमें पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हम करते हैं उसके, जो काम किसी उद्देश्य से किया जाए, कुछ पाने के लिए किया जाए, उसको हम काम्य कर्म कहते हैं। जिसको करने से कोई लाभ नहीं, ना करने से हानि है, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जिन कर्मों को करने से कोई लाभ नहीं, ना करने से कोई हानि नहीं, तो भी हम अपने मन से करते हैं किसी कारण से, कोई बीमार पड़ा है आप उसको देखने जाते हैं, तो आप कुछ पाने की चाहत से नहीं जाते, उसको उसको मिलने जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, पर वो एक निमित्त ऑकेजन है, आप उस काम को करते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इसी तरह यज्ञों में भी तीन तरह के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ उसको कहते हैं जो प्राचीन काल में प्रतिदिन सुबह शाम अग्निहोत्र, जो आप रविवार को एक बार करते हैं, रोज सुबह शाम दोनों टाइम करना, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। इसको करने से कोई लाभ नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं अग्निहोत्र करने से लाभ क्या है? बोले लाभ है कि वायुमंडल शुद्ध होता है। तो बोले तो लाभ हुआ? बोले नहीं, ये लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि रोज आप वायुमंडल को गंदा करते हो मल त्याग करके, आपके शारीरिक जो गंदगियां फैला करके, तो उसके प्रायश्चित के लिए आप अग्निहोत्र रोज करोगे तो वायुमंडल शुद्ध रहेगा, ना करने से पाप लगेगा, तुम जो गंदगी फैलाते हो उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। अग्निहोत्र नित्य यज्ञों में आता है। नैमित्तिक यज्ञ क्या है? जो खास निमित्त से आप करते हैं, जैसे कभी कभी आप करते हैं कि बच्चे का जन्मदिन आप मनाते हैं, आप वेडिंग सेरेमनी मनाते हैं। अब प्राचीन काल में करते थे अमावस्या के दिन हवन करते थे, पूर्णिमा के दिन करते थे, अलग अलग त्योहारों में हवन करते थे। जब नया फसल आता था, किसान के घर में आता था, पहली बार नया फसल आता था, उसको खाने से पहले आहुति दी जाती थी, उसको कहते नवसश्येष्टि यज्ञ, जिसका बिगड़ा हुआ रूप दिवाली के रूप में आप मनाते हैं, आजकल मनाते हैं। तो ये सारे नैमित्तिक यज्ञ है। और एक तीसरा यज्ञ था काम्य यज्ञ, मतलब किसी कामना से किया जाता था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुत्रेष्टि यज्ञ, रामायण में दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसके संतान बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने एक खास तरह के यज्ञ किया जिसके द्वारा बच्चे पैदा होंगे, संतान पैदा होंगे। इसी तरह वर्षेष्टि यज्ञ, कहीं बारिश नहीं होती है उसके लिए खास तरह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से खास तरह के यज्ञ करने से बारिश होती है। इसी तरह आपको पता है प्राचीन काल में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे राज्य जीतने के लिए, राजसूय यज्ञ करते थे। हम अपने घर में भी बहुत तरह के कुछ कामना से यज्ञ करते हैं, उसको हम काम्य यज्ञ कहते हैं। उनमें ये तीनों यज्ञ और तीनों तरह के कर्म हर इंसान को करना जरूरी होता है, ये तो हम जानते हैं। पर इनको करते समय जब हम यज्ञ भावना से करते हैं, यज्ञ भावना क्या, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, कर्तव्य भाव से करते हैं, वो फिर पाप पुण्य से ऊपर चला जाता है, वो फिर हमें जन्म मृत्यु से ऊपर चला जाता है, वो हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। जब कामना से करते हैं उसके सुख दुख हम भोगते हैं, जब कामना रहित होकर के करते हैं फिर वो सुख दुख हमें नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति इस तरह के तीन तरह के यज्ञों के तीनों रूपों को जीवन में तीनों लोगों से संधि संबंध बनाता है, तीन तरह के कर्मों को करता है, ईश्वर भक्ति से वो जन्म और मृत्यु से पार चला जाता है। अगला मंत्र, त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इस तरह जो इस नाचिकेत अग्नि को, नाचिकेत अग्नि मतलब यज्ञ के अग्नि को ठीक ठीक समझ कर करता है, वो विद्वान वो ज्ञानी व्यक्ति जीवन में मृत्यु पाश से मृत्यु की फांस को काट करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस तरह यमराज ने यज्ञ की महिमा का उपदेश दिया नचिकेता को दूसरे वर के रूप में। अब तीसरे वर के लिए हम चलते हैं। एशते अग्निर नचिकेत स्वर्गो यम अब्रणिथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवेव प्रवक्षन्ति जना तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, मैंने तुम्हें वो स्वर्गीय अग्नि, स्वर्गीय अग्नि हिंदी में स्वर्गीय का मतलब होता है वो अर्थ नहीं है, स्वर्गीय मतलब वाला नहीं है कि जो मर गए, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से रिलेटेड जो अग्नि है, जो यज्ञ का अग्नि, उसके बारे में मैंने तुम्हें दूसरे वर के रूप में सब समझा दिया और बोनस के रूप में तुम्हें वो दे दिया कि आज से ये यज्ञ का अग्नि तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, अब तुम तीसरा वर मांगो। तुम्हारा तीसरा वर क्या है? नचिकेता तीसरा वर मांगता है कि येयम् प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नायमस्तीति चैके। ये जो मैंने सुना है लोगों के मरने के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी वो बचा रहता है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं बचता, मतलब जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर आगे कुछ नहीं है। एतत् विद्या मनुषेष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरस्तृतीय। मैं आप मुझे इस पर उपदेश करे, मैं आपके शिष्य बनकर ये जानना चाहता हूं ये असलियत में क्या है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद सचमुच कोई बचता है या नहीं बचता है। मेरा तीसरा वर आपसे यही है, आप मुझे ये बताइए। ये बड़ा जिंदगी का केंद्रीय प्रश्न है, बहुत सेंट्रल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मरने के बाद कुछ नहीं है तो फिर बहुत कुछ सिस्टम बदल जाएगा, अच्छाई और बुराई का कोई मतलब नहीं है, धर्म और अधर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो अच्छा आदमी जो बुरा आदमी दोनों मरेंगे, मरने के बाद तो कुछ नहीं रहेगा, अब दोनों को तो मरना है, तो अच्छा क्यों करे बुरा क्या करे, जो जहां जैसा मिले वैसा ही करे, मरना पड़े मार डालेंगे, काटना पड़े काट डाले, आजकल तो मरना है, मरने के बाद कुछ नहीं है। मनुष्य समाज में अगर कहीं अच्छाई बुराई धर्म अधर्म जो कुछ भी बंटा हुआ है उसका मूल केंद्र बिंदु है कि मरने के बाद मैं पूरी तरह मिटता नहीं हूं, मेरा अस्तित्व बना रहता है, ये कंसेप्ट है, तभी हम अच्छा बुरा धर्म अधर्म के साथ चलते हैं। नहीं तो फिर सच्चा और झूठा, ईमानदार बेईमानों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बेईमान को भी मरना है, मिट्टी में मिल जाना है, ईमानदार को भी मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी में मिलने के बाद कुछ नहीं बचता, तो क्यों ईमानदारी बरते, क्यों बेईमानी बरते, जहां जैसा मौका मिले वैसे ही चले। पूरे इंसानी नस्ल में काफी बड़ा बदलाव आ जाएगा, आ जाता है ये आत्म तत्व के कारण। इसके इर्द गिर्द घूमता है आपकी अच्छाई बुराई, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपके सोशल कस्टम्स, आपके ट्रेडिशन, सब कुछ इसी के अंदर घूमता है। और ये सवाल करोड़ों सालों से आज तक और आज से आगे करोड़ों सालों तक भी उठता रहेगा कि मरने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता। लाखों पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, ऋषि मुनियों का वचन है, उसके बावजूद भी इंसान के मन में यह संदेह बना रहेगा। और नचिकेता और मृत्यु का संवाद भी आज से हजारों साल पहले का संवाद है, उन दिनों भी यह संदेह था, उन दिनों भी दो तरह के लोग मिले। ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न साइंटिस्ट आत्मा को नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है, लाखों साल पहले भी नहीं मानते थे, तभी नचिकेता सवाल उठाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, खत्म। हमारे यहां एक बहुत बड़े आचार्य हुए नास्तिक, ये नास्तिक यूरोप कल्चर नहीं है, ये इंडिया में भी नास्तिक कल्चर। और ये हमें, क्योंकि इंसान हमेशा जहां जहां इंसानियत है वहां वहां बुद्धि भेद है, बुद्धि भेद मतलब अलग अलग बुद्धि हमेशा चलती रहती है। तो हमारे यहां एक चार्वाक करके बड़े आचार्य हुए, वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, कर्जा करके भी घी पियो। उन दिनों शराब का इतना प्रचलन नहीं था, नहीं तो वो लिखते कि कर्जा करके भी शराब पियो, वो कहते थे शराब कर्जा करके भी घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब मर जाएगा शरीर को जला देगा फिर दोबारा थोड़े आने वाला, वो आत्मा को नहीं मानते थे। और ये कोई मॉडर्न साइंटिस्ट कंसेप्ट नहीं, ये लाखों साल पहले हमारे यहां था, और उनको भी हमने आचार्य का स्थान दिया था, आचार्य चार्वाक, उसकी भी एक परंपरा चली थी, आज तक चल रही है। मरने के बाद जो कुछ नहीं, इसीलिए देखिए जैसे ही आप मान बैठो कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, चार्वाक की उस वाक्य में ही आपको मिल जाएगा कि आगे क्या होगा। फिर तो आप कुछ कर्जा करके, कुछ कर्जा करो, कुछ भी करो, क्योंकि चुकाना तो है नहीं, मरने के बाद कौन आएगा। मरने के बाद कुछ नहीं हो के साथ जुड़ गया, कुछ भी करो ऐश करो। ये भोग जो शरीर के हर पल को भोगना, ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये क्यों आया और ईस्टर्न कंसेप्ट में क्यों नहीं आ पाता? बेसिक अंतर है, वेस्ट में जो सिखाया गया मरने के बाद नहीं होता, इसीलिए वो जिंदगी को भोगने पर, एक एक मिनट को भोगने पर बिताते हैं, कि कोशिश करते हैं। ईस्ट में भोग होने पर भी हम भोगते नहीं है, क्योंकि हमारे खून में यही बसा है कि जीवन इतना नहीं है, जीवन तो अनंत है। ये फर्क है वेस्ट में और ईस्ट में, तभी वेस्टर्न कल्चर ऐसा है, ईस्टर्न कल्चर ऐसा है। तो अगर ये जो आत्म तत्व है, ये जीवन के बीच की धुरी है, इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है, इसलिए नचिकेता ने सवाल पूछा कि आप बताइए ये मृत्यु के बाद आत्मा होती है कि नहीं होती। यमराज इसका सवाल, इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं कि वो नहीं जानते थे, इसीलिए कि हर सवाल का जवाब हर किसी को देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी गलत व्यक्ति, अपात्र नालायक व्यक्ति या गलत व्यक्ति सही ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, या गलत ढंग से इस्तेमाल करता है तो बर्बादी की चांस बनी रहती है। इसीलिए वो नचिकेता को परखना चाहेंगे। अगले सत्संग में हम चर्चा करेंगे वो उसको कैसे कठोर परीक्षा से गुजारते हैं, और उस परीक्षा में अगर हम होते तो हम गुजर पाते कि नहीं, वो अगले सत्संग में हम चर्चा करेंगे। फिर वो आत्मज्ञान उसको देगा। इसी के साथ ही